हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 40। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चिद् दुर्गतिम तात गच्छति। तो उम्मीद है कि आपको वो अर्जुन का प्रश्न याद होगा कि कोई व्यक्ति अगर योग के पथ में पूरी तरह से सम्यक रूप से सिद्ध नहीं हुआ और भौतिकतावाद में फिर फंस गया तो क्या वो दोनों ही पक्षों के का नुकसान नहीं उठा गया। तो उसके प्रश्न के उत्तर में भगवान यहाँ उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने कहा हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। श्रीमद् भागवत में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। और आपको ये एक इससे पहले कि आगे बढ़े ये ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन ने पहले बोला है इससे पहले वाले श्लोक में कि निसंदेह भगवान के अलावा इस संदेह को कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ही भविष्य वर्तमान और भूतकाल के ज्ञाता है। तो भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से ये आश्वासन दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, जो योग के पथ में लगा है, उसका कभी उसकी दुर्गति नहीं होती है। श्रीमद् भागवत में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्वोथ पते ततो यदि यत्रक्वा वभद्रम अभूदमुष्य किं कोवार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। और एक बहुत सुंदर बात इसके पहली लाइन में आप देखेंगे, हर भजन न पक्वोत पते ततो यदि, कि अगर कोई व्यक्ति भगवान हरि के भजन में पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ और उसका पतन हो जाता है, फिर भी उसका कोई भी नुकसान नहीं है। यत्र क्वा वा भद्रम, उसका क्या भद्र हुआ, कोई भद्र नहीं हुआ। लेकिन कोई व्यक्ति ये संसार के अपने कर्तव्यों को बड़ा अच्छे से पालन करता रहा तो उसका लाभ क्या हुआ, कोवार्थ आप तो क्या प्राप्त हुआ, आप तो मतलब प्राप्त हुआ, क्या अर्थ प्राप्त हुआ। भजताम स्वधर्मतः, केवल स्वधर्म का पालन करते रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है तो उसको कोई लाभ नहीं हुआ, केवल शून्य है। जैसे एक शून्य लगाए उसके बाद दूसरा शून्य लगाए उसके बाद और दूसरा शून्य लगाए, कितने भी सुंदर शून्य बना लीजिए लेकिन सबका रिजल्ट केवल शून्य है, और वो शून्य है जन्म मृत्यु का चक्कर। लेकिन उसके पहले अगर एक लगा देते हैं तो वो 10, 100, 1000 ऐसे करके बच जाता है। तो इसलिए स्वधर्म का पालन करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके नहीं, कृष्ण की भक्ति को उद्देश्य लेकर के स्वधर्म का पालन करना चाहिए। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। ये तो आप समझ रहे होंगे कि जो हम भोगों से विरत नहीं है वो व्यक्ति योगी कैसे हो सकता है। योगी और भोगी की स्पेलिंग अलग अलग है, समझते हैं इसका मतलब आप लोग। तो भोग त्यागे बिना व्यक्ति योगी नहीं हो सकता, तो ये बात प्रभुपाद बता रहे हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, यानी कि भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त ना हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। ये हमने चर्चा पहले कर ली है किस प्रकार से ऐसा होता है, ये तर्क है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई सुधर्म का आचरण नहीं करता है तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है, अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। ये एनालॉजी ड्रॉ की जा रही है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण के कर्तव्य नहीं करता है, क्षत्रिय होकर के क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं करता है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर उसको पाप भोगना पड़ता है। तो क्या इसी प्रकार से भागवत धर्म भी है, क्या भागवत धर्म को पूर्ण ना कर पाने के कारण क्या व्यक्ति इस प्रकार से पाप को भोगेगा, ये भी तर्क हो सकता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण ना करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का भाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। बहुत अच्छी बात है, आप पर ध्यान दीजिएगा। मान भी लिया जाए कि स्वधर्म आचरण करने में अगर कुछ गलती हो गई भक्ति करने की वजह से और उसकी वजह से अगला जन्म निम्न परिवार में भी हो गया तो भी जो भक्ति का अभ्यास है वो कभी भूलेगा नहीं व्यक्ति। भगवान उसको फिर भक्तों का संग देंगे और फिर वो भगवान की भक्ति के प्रति अनायास रूप से आकर्षित हो जाएगा। इसीलिए जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं और वो लोग बड़े आश्चर्य हो जाते हैं कि वो लोग तो भक्ति के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं लेकिन परिवार वाले आकृष्ट क्यों नहीं हो रहे। बल्कि परिवार वाले बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या, इतना नाम जप करने की क्या जरूरत है, ये सब बहुत सारी बातें वैसे करते हैं लेकिन फिर भी भक्त छोड़ नहीं पाता है। तो उसे समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में भक्ति करी है। तो अब बुद्धिमानी इसी में है कि व्यक्ति अधिक से अधिक भक्ति करे। ये परिवार वाले और जितने भी लोग हैं वो तो इस जन्म में हैं, कुछ इस जन्म का भी मतलब हम कितने समय तक जिएंगे पता नहीं, तो उसके बाद फिर चेंज हो जाएंगे। तो उन लोगों की बात पे ध्यान दिए बिना व्यक्ति को अपनी भक्ति पे फोकस करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार वालों की बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दे, लेकिन अगर भक्ति करने से मना करें तो उतनी मात्रा में उस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानते थे, भले ही हिरण्यकश्यप उनके पिताजी क्यों ना रहे हो। ओके। और कोई व्यक्ति अगर स्वधर्म का पालन कर रहा है तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो उसे शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? असली में शुभ यही है कि हमारी मति कृष्ण में लगे, और नहीं तो सब कुछ अशुभ ही है। और जब तक मति कृष्ण में लगेगी नहीं तब तक हमारा हृदय संतुष्ट भी नहीं होगा। तो इसलिए जन्म जन्मांतर के अभ्यास के द्वारा व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में सिद्धि को प्राप्त करता है। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देनी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा बड़ी महान है और हम लोग एक जन्म में भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं अगर हम श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, जो जिसके द्वारा हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति मतलब जानवरों की तरह आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते हैं और अगले जन्म के बारे में कुछ नहीं सोचते। जो लोग शास्त्र में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अर्थात जो लोग अपना अगला जन्म अच्छा करना चाहते हैं तो शास्त्रों के अनुसार कुछ नियमों का पालन करते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पार्श्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। तो ये समझ में आ गया ना आप लोगों को, जो लोग नियम पालन नहीं कर रहे हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। कुछ पढ़े लिखे हो सकते हैं, नहीं हो पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन उनकी वृत्तियां सभी का उनका जो भी ज्ञान है वो केवल भोग में ही लगा रहता है। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होती क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार निद्रा भय तथा मैथुन का भोग करते हुए संसार में निरंतर रहते हैं जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोग सोचते हैं या कहते हैं कि मेरा जीवन खराब हो गया अगर मुझे भोग नहीं मिले, बल्कि अब उसका जस्ट विपरीत शास्त्र बोलता है। शास्त्र कहता है कि अगर भोग नहीं मिले और भोग नहीं किया तो अच्छा है, जितना कम भोग किया उतना अच्छा, और जितना अधिक योग किया, जितना अच्छा संयमित जीवन जिया उतना ही भगवान की कृपा जीवन में प्राप्त होगी और इससे जीवन में उन्नति होगी। तो ये सफलता का मानदंड आजकल के समाज में परिवेश में परिवर्तित हो गया है, लेकिन शास्त्र का मानदंड परिवर्तित नहीं होता है। शास्त्र का मानदंड क्या है? राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्म वैशेर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। आसक्ति और द्वेष से रहित होकर के व्यक्ति अपने जीवन में संयम लेके आए, नियमितता लेके आए और इसके द्वारा भगवान की कृपा को प्राप्त करे। कल्याण मार्ग के अन्यायियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी यानी कर्मकांडीय लोग, जो लोग यज्ञ करते हैं ताकि उनको स्वर्ग इत्यादि प्राप्त हो। इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग यानी कि मुक्ति की कामना करने वाले ज्ञान योगी इत्यादि, जो लोग देख लिए हैं कि इस जगत में भोगों का प्रयास करना अच्छा नहीं है तो इसलिए यज्ञ संपन्न करना भी अच्छा नहीं है अगर हम भोग करना चाहते हैं। कृष्ण भावना मृत के भक्त, तो ये लोग ना तो भोग चाहते हैं ना वो मुक्ति चाहते हैं, वो कृष्ण की प्रसन्नता चाहते हैं। तीसरे वर्ग, प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्र तृप्ति की इच्छा ना करने वाले। सकाम कर्मी का मतलब होता है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखता है, वो कोई भी यज्ञ करता है उसका उद्देश्य होता है भोग करना। इसलिए सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहां तक कि स्वर्ग लोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ का मतलब यही है कि व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए और भगवान के धाम की प्राप्ति करे, और नहीं तो इस जगत में कहीं पे भी जाएगा ये दुख हमेशा रहेंगे ही। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर नीचे तक जितने भी लोग हैं सभी में जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है, तो शुभ नहीं है। परम सत्य की दृष्टि से, एब्सोल्यूट दृष्टि से शुभ नहीं है। शुभ कर्म तो वो हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। बहुत सुंदर बात है। देह में आसक्ति होने के ही कारण हमें बार बार देह ग्रहण करना पड़ता है, तो कोई भी ऐसा कार्य जिसके द्वारा देहात्म बुद्धि का ह्रास हो ये हमारे लिए कल्याणमय कार्य है। जैसे नाम जप करना, भगवान की प्रणाम करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान के बारे में सुनना, इस प्रकार से भक्ति की क्रियाओं में, विविध क्रियाओं में लगने से व्यक्ति की देहात्म बुद्धि धीरे धीरे कम होती है, तो ये सब कल्याणमय कार्य है जिसको भगवान ने बताया था, ना ही कल्याण कृतम कश्चित दुर्गतिम तत गच्छति। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य हैं, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। अच्छा बात है, यहाँ बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी स्वेच्छा से हम असुविधाओं को स्वीकार करें। स्वेच्छा का अर्थ क्या होगा? स्वेच्छा से हम स्वीकार करेंगे शारीरिक असुविधाओं को जब हमको ज्ञान होगा, जब ये ज्ञान होगा कि जगत दुख का घर है और भगवान का धाम है, उसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब हमारा हृदय शुद्ध हो, तो फिर व्यक्ति इस ज्ञान के आधार पर प्रयास करेगा, तप करेगा। लेकिन अगर ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति कोई तपस्या नहीं करता है, न करने में उसकी रुचि होगी और ना ये पता होगा कि तप क्या है। और यहाँ पे जब प्रभुपाद बोल रहे हैं घोर तपस्या, तो घोर तपस्या का अर्थ समझना चाहिए। घोर तपस्या का अर्थ है लगातार अपने को भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित रखना, एक क्षण के लिए भी कृष्ण की सेवा से अपने को अलग न रखना, और ये काफी मुश्किल हो सकता है शुरुआत में। इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, प्रयास की आवश्यकता होती है। तो अगर इस प्रकार की सेवा में की भावना से अगर भक्त भावित रहते हैं तो फिर वो निश्चित रूप से भगवान की कृपा के भाजन होते हैं। इसको भगवान आगे बताएंगे कि जो लोग लगातार मेरी सेवा में नियुक्त रहते हैं उनको मैं ही बुद्धि देता हूँ जिसके द्वारा वो भगवान की प्राप्ति कर सकें। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से लगातार भगवान की सेवा में लगा है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि उसकी भक्ति संपूर्ण नहीं भी हो पाती है, उसका शरीर छूट जाता है, तो भी उसको बहुत लाभ है, और उस लाभ के बारे में भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। हरे कृष्णा।